पिछले दिनों ये मौजू जेर बहस रहा मीज़ान में भी, ख़त्म नबूवत की बहस में, और उसके बाद भी हमने इस पर बात की थी। एक सवाल सामने आया है, वो ये है कि जब ये कहा जाता है कि जो मुखातब इलाही है, ख़िताब इलाही नबूवत का खासा है, तो इस पर एतराज़ ये किया गया है कि जो ये बात कह रहे होते हैं लोग, वो दरहकीकत ये कहना चाहते हैं कि नबी से अल्लाह ताला सिर्फ़ कुरान में बात करते हैं, जबकि जो हमारे उसूलियीन हैं उनका ये कहना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिहादात भी काबिल इत्तबा हैं, वाजिबुल इताअत हैं। गोया उनके जो इज्तिहादात हैं या उनसे मंसूब जो बातें हैं वो भी मुखातबा ही होती हैं। तो ये ज़रा वाजे कीजिएगा, जब आप ये फरमाते हैं कि नबूवत का खासा है, मुखातबा इलाही नबूवत के साथ खास है, तो क्या ये सिर्फ़ कुरान की हद तक होता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी के जो बाकी मामलात कर रहे होते थे वहाँ भी अल्लाह की रहनुमाई आ रही होती थी?
नहीं, ये किताब का नहीं, नबूवत का खासा है। यानी अल्लाह ताला जब किसी को अपना पैगंबर बनाते हैं, आप रसूल का तर्जमा पैगंबर करते हैं ना, नबी का तर्जमा भी पैगंबर करते हैं। मैं इससे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि नबी असल में कयामत की खबर देने वाले को कहा जाता है, उस नबे अजीम की खबर जिसके बारे में ये कहा है ना कि लोग आपसे उस नबे अजीम के बारे में पूछते हैं। सूरह नबा में यही लफ्ज़ उसके लिए इख्तियार किया गया है, तो नबी उसकी ख़बर देता है। अल्लाह ताला जब किसी को इस मनसब पर मामूर करते हैं तो उस मनसब की ज़िम्मेदारियों को अदा करने के लिए, अपनी हिदायत लोगों तक पहुंचाने के लिए उससे मुखातबत फरमाते हैं। नबूवत की हकीकत मुखातबत है। चुनांचे कुरान मजीद में देखिए कि अल्लाह ताला क्या कहते हैं, कहते हैं कि आप लोगों को ये बता दें कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया, मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। तुम्हारी तरह से मुराद ये नहीं है कि मर्तबे में तुम्हारी तरह का, या खासियात में तुम्हारी तरह का, या खिसाल में तुम्हारी तरह का, या अखलाक में, यानी बशरियत के पहलू से मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूँ। वो क्या चीज़ है मुझे तुमसे अलग कर देती है? वो है यूहा इलैया, मेरी तरफ वही की जाती है। मुझे मुखातबा इलाही का शरफ हासिल होता है। मैंने जब अपनी किताब मीज़ान में ये लिखा है कि नबूवत क्या है, ये मुखातबा इलाही के लिए किसी शख्स का इंतखाब है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उससे बात की जाए और उसके ज़रिए से इंसानों से बात की जाए। अल्लाह ताला के यहाँ नबूवत यही है, और इसी को इस जुमले में भी दो मर्तबा कुरान मजीद में कहलाया है। मज़मून तो और जगहों पर भी है कि इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया, यानी और कोई इम्तियाज़ मुझे हासिल नहीं है कि मैं तुम तक कोई बात पहुँचा दूँ अपनी तरफ से, या कोई बात अपने फ़लसफ़े के तौर पर तुम्हें बताऊँ। उस लिहाज से मैं कोई बात करूंगा तो जैसे दूसरे इंसान करते हैं करूंगा, लेकिन मुझे जो इम्तियाज़ हासिल है वो यूहा इलैया, ये यूहा इलैया है, मुखातबा इलाही है जो ज़मीन व आसमान का फ़र्क पैदा कर देता है। यानी अल्लाह ताला ने एक शख्स का इंतखाब कर लिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिन रात अल्लाह ताला की मुखातबत का शरफ़ हासिल होता था। कुरान मजीद उनमें से एक चीज़ है, बड़ी चीज़ है, अल्लाह का कलाम है। चुनांचे देखिए जो नबूवत के तकर्रुर की आयत है कुरान में, वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि कारण नासो उम्मतन वाहिदा, यानी इंसानों की जब इब्तिदा की गई तो आदम अलैहिस्सलाम को ज़रूरी हिदायत दे दी गई, उनके बच्चों को भी मुंतकिल हुई, कोई इख्तलाफात नहीं थे, लोग तौहीद पर थे, क़यामत की तैयारी करते थे, अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह की बंदगी का सही तसव्वुर लेके ज़िंदगी बसर करते थे। कानन नास उम्मतन वाहिदा, दूसरी जगह बयान की है माँ कानन नास इल्ला उम्मतन वाहिदा, लेकिन फिर क्या हुआ? फख्तलफू, उसके बाद इख्तलाफात पैदा होना शुरू हुए, यानी चीज़ों की ताबीर में इख्तलाफ, दीन की हकीकत में इख्तलाफ, किसी इबादत को समझने में इख्तलाफ, या अल्लाह ताला के वजूद, अल्लाह ताला के कायनात से ताल्लुक़ के बारे में, जैसे हम कदीम तमद्दुन का मुताला करते हैं, तो पैदा होना शुरू हुए। तो क्या हुआ? फबासल्लाहुन नबीन, उसके बाद नबियों का सिलसिला जारी किया गया। यानी नबियों का सिलसिला जब जारी किया गया और उनको ज़िम्मेदारी क्या दी गई? मुबशरीन व मुनज़रीन, वो बशारत दे दें क़यामत की, जब वो मुनादी करेंगे तो लोग फौज़ो फला पाएँ, उनको बशारत दे दें, और जिन लोगों को किसी बुरे अंजाम से दो चार होना हो सकता है उनको ख़बरदार कर दें। तो इंज़ार और बशारत, ज़ाहिर है कि ये वही के बगैर कैसे हो सकता है? ये तो इसी उसूल पर होगा कि इन्नी अला बैयनत मिन रब्बी, यानी या ये मौजूद वही के हवाले से हो सकता है या खुदा से वही पाने के बाद हो सकता है। तो पैगम्बरों को अल्लाह ताला वही से नवाजते हैं और शबो रोज़ उनकी रहनुमाई करते हैं। यानी ज़ाहिर है कि जब अल्लाह ताला किसी को इतने बड़े मनसब पर फ़ायज़ करेंगे तो फिर उसके बाद तो रहनुमाई होगी, तो वो कोई बात करेगा। उसके बाद ये कहा है कि वनज़ला माहुमुल किताब, और उनके साथ किताब भी नाजिल करते हैं, यानी किताब भी। बाज़ पैगम्बरों के साथ ये किताबें आई हैं, बाज़ के साथ नहीं आए, بعض کے ساتھ کوئی مختصر قسم کے صحیفے آئے ہیں تو کتاب بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کتاب بھی، یہ نہیں ہے کہ کتاب ہی. اور کتاب کس لیے دی جاتی ہے؟ اسی آیت میں بیان کیا گیا ہے، تاکہ ایک تحریری صورت میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت سامنے ہو جو فیصلہ کن ہو سکے. اختلافات ہیں نا، یعنی بات یہاں سے شروع کی ہے وہ یہ ہے کہ دین کو سمجھنے میں جو اختلافات ہو جاتے ہیں تو پیغمبر کے انذار و بشارت کے باوجود وہ قائم اگر ہیں تو پھر کتاب فیصلہ کن ہوگی. اور کتاب کے بارے میں یہ کہا کہ وہ کتاب اس لیے نازل کی ان کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ لوگوں کے اختلافات میں وہ کتاب فیصلہ کن ہو جائے. تو کتاب تو پیغمبر کی وحی کا ایک ظہور ہے، ورنہ تو آپ دیکھیں آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن مجید میں دسیوں جگہوں پر اس کا ذکر موجود ہے کہ آپ سے کوئی بات کی گئی، آپ کو کوئی ہدایت کی گئی، آپ کو کوئی حکم دے دیا گیا. یہ سارا کا سارا جتنا دینی عمل ہے جس میں ابراہیمی روایت کو دین کی حیثیت سے جاری کیا گیا ہے، وہ تو پہلے رسول اللہ نے جاری کر دیا. اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر کیسے جاری کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس زمن میں تمام ضروری باتیں فرمائی، اس کے بعد ہی جاری کیا گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ نے طے کر دیا کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی پہلے اور اس کے بعد آپ قرآن ملائیں گے؟ یہ سب کی سب اللہ کی ہدایت ہے. تو پیغمبر اصل میں مخاطبہ الہی کی بنیاد پر لوگوں سے بات کرتا ہے. اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ نبوت کی حقیقت مخاطبہ الہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انسانوں سے بات کریں، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں اختیار کرتے کہ ہر انسان سے بات کرنا شروع کر دیں. اس کے لیے کسی انسان کا انتخاب کرتے ہیں، وہ مخاطبت اس سے ہوتی ہے اور وہ آگے اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتا ہے.
اچھا ہم سے پچھلے دنوں ہم نے میزانی میں پڑھتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تو افراد کا انتخاب کیا ہے، ان کو پیغمبر اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطبے کا شرف دیا، اور اس کے بعد اقوام کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے. تو سوال اس میں پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اقوام کو ایک ذمہ داری پر فائز کر رہا ہے، تو جب افراد تو کرتا تھا تو وہاں تو ان سے بات کرتا تھا، تو جب اقوام کو کیا تو پھر وہاں پر کیا اقوام سے مخاطبہ اللہ تعالیٰ کرتے تھے؟
نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ کفائنا من بعد ہی بالرسل، پھر ایک کے بعد دوسرا پیغمبر آتا تھا. وہاں پر بھی پیغمبر ہی کو واسطہ بنایا جاتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبر سے بات کرتے تھے، اور پیغمبر چونکہ ہر وقت موجود ہوتے تھے تو بادشاہ بھی اگر ہوں تو انہی سے رہنمائی لیتے تھے، قوم بھی انہی سے رہنمائی لیتی تھی. اور پیغمبر کی رہنمائی کا جب بنی اسرائیل نے انکار کرنا شروع کر دیا، سیدنا یحییٰ کے ساتھ جو کچھ ہوا اور پھر سیدنا مسیح کے ساتھ، تو ان پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ کر دیا اور قیامت تک کے لیے عذاب کا فیصلہ کر دیا گیا.